रात को डिनर के बाद शिवी सोने जा चुकी थी। इस बीच उसकी सिद्धांत या नंदिनी से कोई बात नहीं हुई थी। उसका अब तक का टाइम आर्य के ननिहाल में अच्छा बीता था। अगली सुबह शिवी आराम से सो रही थी। उसके कमरे के बाहर आर्य चाय के कप के साथ खड़ा था। वो डोर नॉक कर रहा था। कम ऑन नंदिनी, गेट अप, पिछले 5 मिनट से डोर नॉक कर रहा हूँ, आर्य ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाकर कहा। वहीं उसे दरवाजे के बाहर देखकर बंधन ने प्रतुभा से कहा, देखा मामी, ब्रो कितने बदल गए हैं। मेरे अलावा वो इतनी केयर किसी की नहीं करते थे और अब कब से भाभी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है ना बंधन, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही, प्रतिभा ने मुस्कुराकर पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं एनी टाइम उनके साथ नहीं रह सकती, लेकिन अब भाभी आ जाएगी और उनके आने के बाद ब्रो अब अकेलापन फील नहीं करेंगे। मैं हमेशा से चाहती थी कि कोई ऐसा हो जो मेरे ब्रो का हाल मिनट ख्याल रख सके। पहले एली आई, लेकिन उसके जाने के बाद भाई फिर से अकेले हो गए, पर अब भाभी से मिलने के बाद मेरी टेंशन दूर हो गई है, बंधन ने आर्य की तरफ देखकर कहा। वो आर्य से काफ़ी दूर थी। उसने तेज़ आवाज़ में चिल्लाकर कहा, ब्रो आप चाहो तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। नो बंधन, मैं देख लूँगा, आर्य ने तेज़ आवाज़ में जवाब दिया। फिर उसने धीरे से बड़बड़ाकर खुद से कहा, अब उठ भी जाओ नंदिनी, इससे पहले कि बंधन मेरा मजाक बनाने लगे। आर्य दरवाजे पर अपना एक हाथ लगाए खड़ा था, तभी दरवाज़ा खुला तो उसे हल्का धक्का लगा। गुड मॉर्निंग, शिवी ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा। आर्य बिना कुछ बोले अंदर आ गया। उसने चाय की ट्रे बेडसाइड पर रखी। आगे से उठने में इतना टाइम मत लगाना, मैं कब से तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं थकी हुई थी, इस वजह से नहीं उठ पाई, कल से अलार्म लगा लूँगी, शिवी ने जवाब दिया और बाथरूम में चली गई। सुबह सुबह मेरा मूड और ये चाय, दोनों वेस्ट होने से बेटर है कि मुझे ही कुछ करना होगा। आर्य शिवी के लिए जो चाय लेकर आया था वो उठाकर खुद ही पीने लगा। शिवी फ्रेश होकर बाहर आई। मुझे सिट से बात करनी है, क्या मैं उसे बता सकती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ देहरादून में हूँ? हाँ बता देना, लेकिन साथ ही उसे ये भी कह देना कि वो ये बात किसी से शेयर ना करे, आर्य ने जवाब दिया। शिवी ने उसकी बात पर हामी भरी और अपना फ़ोन उठाकर बालकनी में चली गई। वो सिद्धांत से बात करने के लिए गई थी, तो वहीं उसके तुरंत जाने पर आर्य ने बड़बड़ा कर कहा, 2 मिनट का भी सब्र नहीं होता इस लड़की से, कम से कम प्यार से बात तो कर सकती हैं। आर्य उठकर वहां से चला गया। वहीं शिवी सिद्धांत से बात कर रही थी। कल नंदिनी और उसके बीच जो भी हुआ था उसने सब सिद्धांत को बताया। तो उस रूड ओबरॉय को तुम पर दया आ ही गई, सोचा नहीं था वो तुम्हारी हेल्प करेगा, सिद्धांत ने हैरानी से कहा। तुमने नहीं सोचा होगा, लेकिन मैं 100% श्योर थी। वो कितना भी गुस्सा कर ले या रिश्ता तक तोड़ दे, लेकिन उसे मेरी फिक्र हमेशा रहेगी। आई विश कि मैं भी उसे इस तकलीफ से बचा पाती। मैं उसका साथ देना चाहती हूँ, पर मैं पापा को भी नहीं छोड़ सकती, शिवी ने मायूसी से कहा। फिर उसने अंदर की तरफ देखा तो आर्य वहाँ नहीं था। अच्छा शिवी, अचानक मेरे माइंड में कुछ स्ट्राइक हुआ है। उस टाइम तुमने अपने पापा को स्टोर रूम में देखा था। उन्होंने खुद से ही अपना गुनाह कबूल कर लिया था, इसलिए घर की ज्यादा तलाशी नहीं ली गई। उनके बयान के मुताबिक उन्होंने मर्डर वेपन और बाकी सबूत गार्डन में किसी गड्ढे में दबाए थे और वो वहीं पर मिल गए थे। मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं अपने तरीके से उस घर की तलाशी लूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? सिद्धांत ने आर्य का टॉपिक छोड़कर केस के बारे में बात करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ गंभीर थी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें घर की चाबियाँ लेने मम्मा के पास जाना होगा, शिवी ने उसे तलाशी लेने के लिए हाँ कह दी थी। वही तो प्रॉब्लम है, तुम्हारी मॉम वो थोड़ी अजीब है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। ऊपर से मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, इस वजह से पक्का मुझसे नाराज होगी। उनसे चाबियाँ निकलवाना मुश्किल है। सॉरी, मैं तुमसे बिना मिले आर्य के साथ यहाँ आ गई। तुम चाबी वाले को बुलवाकर दूसरी चाबियाँ बनवा सकते हो। मुझे नहीं लगता कि मम्मा तुम्हें उस घर की चाबियाँ देंगी। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगी? मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं करने जा रहा। इनफैक्ट उन्हें तो हमारी हेल्प करनी चाहिए, सिद्धांत ने हैरानी से पूछा। उसका एक सीधा सा कारण है, वो नहीं चाहती उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो। पापा अब उनके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं, जिन्हें वो कभी बाहर नहीं देखना चाहती। फिर भी मैं तुम्हें उनके नंबर सेंड कर देती हूँ, तुम एक बार बात करके देख लेना, शिवी ने बातचीत को वहीं खत्म करते हुए कहा। उसने कॉल कट किया और उसके बाद सिद्धांत को नंदिनी के नंबर भेज दिए। वहीं सिद्धांत अब इस काम में और ज्यादा देरी नहीं चाहता था। जैसे ही उसे नंबर मिले उसने तुरंत नंदिनी को कॉल किया। नंदिनी अपने कमरे में थी। इतनी सुबह अननोन नंबर से कॉल देखकर वो भी हैरान थी। कॉल इंडिया से आ रहा था, ऊपर से उसने जिस नंबर से कॉल किया था वो लंदन का था। उसने कॉल रिसीव करके कहा, कौन? आंटी, मैं सिद्धांत शुक्ला बोल रहा हूँ, आप मुझे जानती होंगी, मैं शिवी का दोस्त हूँ और मैं ही शिवंकल का केस हैंडल कर रहा हूँ, सिद्धांत ने नरम लहजे में कहा। हाँ, तुम मेरे लिए कैसे अनजान हो सकते हो? तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी आज मेरे खिलाफ हो गई। वो उल्टी सीधी हरकतें कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। खैर छोड़ो, और बताओ कि मुझे फोन क्यों किया है, नंदिनी ने रूखे तरीके से कहा। मुझे आपके पुराने घर की चाबी चाहिए, मैं वहां अपने तरीके से छानबीन करना चाहता हूं, शायद कुछ ऐसा मिल सके, सिद्धांत उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी नंदिनी उसकी बात बीच में काट कर बोली, नहीं, वहां ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिससे तुम शिव को बेगुनाह प्रूव कर सको। सबूत इनोसेंट लोगों के खिलाफ मिलते हैं, क्रिमिनल्स के नहीं। शिवी में तो बचपना है, लेकिन तुम तो एक लॉयर हो, मैंने तुमसे ये बेवकूफी की उम्मीद नहीं की थी। क्यों अपना टाइम और इमेज खराब करना चाहते हो, वो मेरी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं भी मिलेगा तो देख लूंगा। क्या मुझे आपके घर की कीज मिल सकती है, सिद्धांत ने एक बार फिर पूछा। हाँ, तुम्हें मेरा नंबर जरूर शिवी ने दिया होगा, क्या कॉन्टैक्ट नंबर देते टाइम उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं तुम्हें उस घर की कीज कभी नहीं दूंगी, तुम्हारे वहां जाने का रीजन जानने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली, नंदिनी ने घुमा फिरा कर कहा। हाँ, उसने कहा था, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करना चाहता था, आप एड्रेस बता दीजिए, मैं चाबी लेने खुद आ जाऊंगा। आई एम इम्प्रेस्ड, कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है, नंदिनी ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा। सिद्धांत जिस लहजे में बात कर रहा था उसमें नंदिनी चाहकर भी ना नहीं कह सकी, उसने उसके सामने ना कहने का ऑप्शन ही नहीं रखा था। एड्रेस, सिद्धांत ने कहा, ऐसा करो फिर 2 घंटे बाद मुझे हमारे घर पर ही मिलो, मैं वहीं मिलूंगी, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे सब प्रूफ करते हो या तुम्हें क्या मिलता है, नंदिनी ने जवाब दिया। फिर उसे शिवी का ख्याल आया तो उसने अपनी आवाज़ को धीमी करके कहा, शिवी उसके साथ है ना, मैंने उस लड़के को मना किया था फिर भी उसने उसकी हेल्प कर दी, फिर बोलता है कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। हाँ, कई बार रिश्तों के बीच कितने भी डिफरेंसेस आ जाए लेकिन दिल नहीं मानता, रिश्तों में नाराजगी आ सकती है आंटी, दूरियां नहीं। अब आप खुद को ही देख लीजिए, अंकल से कितनी भी नाराज हो जाएं आप, लेकिन आपने मुझे कीज देने से डायरेक्ट मना नहीं किया, इनफैक्ट अब तो आप खुद आना चाहती हैं, सिद्धांत ने हल्का मुस्कुरा कर कहा। उसकी बात सुनकर नंदिनी के चेहरे पर भी स्माइल थी, लॉयर हो तो बातों से खेलना भी काफी अच्छे से आता है, चलो मिलते हैं। सिद्धांत से बात करने के बाद नंदिनी ने कॉल कट कर दिया। वो शिवी के साथ सख्त जरूर थी लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्हें उसकी फिक्र नहीं थी।
जानती थी तुम उसे ले जाओगे, तभी मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। आई होप शिव, तुम्हारी वजह से जो प्रॉब्लम्स हमारे रिश्ते में आई हैं वो तुम्हारी बेटी के रिश्ते में कभी ना आए, नंदिनी ने अपने मन में कहा। वो उठी और तैयार होने के लिए चली गई। जब से वो यहाँ आई थी जिम अक्सर बाहर ही रहता था, अभी भी वो गौरव मलिक के ऑफिस में था और हरिद्वार जाने की तैयारियां कर रहा था, तो वहीं उसकी गैर मौजूदगी में नंदिनी आराम से अपने पुराने घर जा सकती थी। कुछ ही देर में वो वहां पर मौजूद थी, सिद्धांत अभी तक आया नहीं था। नंदिनी घर में खामोश खड़ी उसकी दीवारों को देख रही थी, उसकी आंखें नम थी। इस घर में हमने हमारी हैप्पी लाइफ का सपना देखा था शिव, बहुत उतार चढ़ाव देखे, गिरे संभले सब किया, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना बदल जाओगे। हमेशा शॉर्टकट अपनाने का तरीका मेरा होता था, तुम तो मेहनती थे, फिर इस बार तुमने शॉर्टकट क्यों लिया? हम दोनों के रिश्ते की दूरियों ने मेरे और शिवी के रिश्ते को भी बिगाड़ दिया। तुम नहीं थे मुझे समझाने के लिए, पहले जब भी उस पर गुस्सा करती थी तो तुम प्यार से मुझे समझाते थे, तुम्हारा गुस्सा भी अब उस पर निकलता है, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। नंदिनी वहां खड़ी अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रही थी, तभी उसे वहां किसी के आने की आहट हुई। उसने जल्दी से आंसू पोंछे और खुद को नॉर्मल किया। उसने बाहर आकर देखा तो सिद्धांत अपनी टीम के साथ आ चुका था, उसके साथ एक प्राइवेट डिटेक्टिव की टीम थी। उनकी टीम में 4 मेंबर थे, हेड डिटेक्टिव, 2 लड़के और 1 लड़की। पूरी तैयारी के साथ आए हो, नंदिनी ने उन सब की तरफ देखकर कहा। हाँ, आज का दिन हम यही बिताने वाले हैं, आप चाहें तो हमारे इस एडवेंचर का हिस्सा बन सकती हैं मैडम, उनकी टीम में से लड़की ने कहा। वो उनकी टीम की इकलौती फीमेल मेंबर थी, वो देखने में 18-19 साल की लग रही थी, उसने नया नया ही ज्वाइन किया था। इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ये थोड़ी मुँहफट है, आप यहाँ से जा सकती हैं, मैं सब देख लूंगा, सिद्धांत ने बात को संभालते हुए कहा। हाँ, जा सकती हूँ, लेकिन मुझे भी तुम लोगों के एडवेंचर का हिस्सा बनना है। चलो, बातें बहुत हुई, काम पर लगते हैं, नंदिनी बोली। डिटेक्टिव टीम का हेड लगभग 40 साल का आदमी था, उसने घर को अपनी नज़रों से पूरा टटोल डाला। यहाँ तो बहुत माथा बच्ची होने वाली है, काम शुरू करने से पहले मुझे थोड़ा रिलैक्स करना है, आई नीड हार्ड कॉपी, उसने नंदिनी की तरफ देखकर कहा। डोंट वरी मिसेस वॉटसन, मैं बाहर से ऑर्डर कर लूंगा, सिद्धांत ने कहा। उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कॉफ़ी बना देती हूँ। हाँ, खाना तुम लोगों को बाहर से ही ऑर्डर करना होगा, कहकर नंदिनी किचन की तरफ चली गई। कुछ ही देर बाद नंदिनी कॉफ़ी के साथ उनके पास मौजूद थी। उन्होंने ज्यादा छानबीन शुरू नहीं की थी, बस वो हर एक कोने को गौर से देख रहे थे। कॉफी पीने के बाद डिटेक्टिव ने कहा, इस घर में कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ मैं अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करने वाला। क्या कोई और जगह है जहाँ पर हम लोग को सच में कुछ मिलने की होप हो? शिवी के स्टेटमेंट के अनुसार उसने वारदात के समय अपने पापा को स्टोर रूम में देखा था। हमें शुरुआत वहीं से करनी चाहिए, सिद्धांत ने जवाब दिया। उसका इशारा पाकर वो सब लोग स्टोर रूम में गए। उन्होंने दरवाजा खोला तो एक अजीब सी सीलन की बदबू उनके नाक में घुसी। शिवी ने पूरे घर की सफाई करवा ली थी, लेकिन वो कमरा अभी भी गंदा पड़ा था और वहां मिट्टी उड़ रही थी। वो जगह काफी बिखरी हुई भी थी। उसे देखकर डिटेक्टिव ने रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ कहा, इसे देखकर सच में लग रहा है कि काम करने आए हैं, वरना उस साफ सुथरे घर में तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला था। तुरंत ही सारे लोग काम पर लग गए। वहीं नंदिनी धूल मिट्टी होने की वजह से बाहर खड़ी थी।